الحمد لله وكفى، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، آج کی ہماری کلاس، کیونکہ یہ یوٹیوب میں سٹریم ہو رہی ہے تو امید ہے کہ طالبات اس پر آسانی سے ہمیں کنیکٹ کر لیں گی. آج کی جو آیت ہے وہ آیت نمبر 137 اور سورہ انعام، اور یہ آٹھواں پارہ ہے. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وكذلك زين لكثير من المشرکین، اور اسی طرح مزین کر دیا بہت سے مشرکوں کی نگاہ میں، قتل اولادہم، اپنی ہی اولاد کا قتل کرنا، شرکاؤہم، ان کے شریکوں نے، لیردوہم، تاکہ ان کو ہلاک کریں، ولیلبسو علیہم دینہم، اور رلا ملا دیں ان پر ان کے دین کو. ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، ما فعلوہ، تو وہ یہ کام نہ کرتے. فذرہم، سو آپ چھوڑ دیں ان کو. وما یفترون، اور ان کے جھوٹ کو چھوڑ دیں، ان کو بھی چھوڑ دیں اور ان کے جھوٹ کو بھی چھوڑ دیں. قرآن پاک کی اس آیت میں تذکرہ ہو رہا ہے مشرکین کا. یہ جو مشرکین جو عبادت کرتے ہیں باطل معبودوں کی، بتوں کی، اور ان بتوں کو حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ نے تشریح کی شیاطین سے، کہ بت بھی شیاطین ہوتے ہیں اور یہ عام جو بڑا شیطان ہے اس کے چیلے ہوتے ہیں. تو اس مبارک آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح ہم نے مزین کر دیا، یہ جو مشرک تھے جو بتوں کی عبادت کرتے تھے، ہم نے ان کی آنکھوں میں اٹریکٹو بنا دیا، مزین کر دیا اپنی ہی اولاد کا قتل کرنا. تو ان کو اپنی اولاد کا قتل کرنا کوئی اچھی چیز، اٹریکٹو چیز، ثواب کی چیز. اور یہ کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شرکاہم، ان کے شریکوں نے، یا ان شیطانوں نے. لیردوہم، اور کس لیے شیطانوں نے یہ کیا؟ تاکہ ان کو ہلاک کر دیں. تو یہ پکی بات ہے، اور بار بار ہم قرآن پاک میں یہ دیکھتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ انسان کو ہلاک کرنے کے در پہ ہے، اس کو گناہوں میں ملوث کرنے کے لیے اس کی زندگی ہے، اس کا مقصد یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا ان الشیطان عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے. اور شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ غلط کام، گناہ کے کام کو اٹریکٹو بنائے، انسان کا دل کھچے ان گناہوں کے کام کی طرف. تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دشمن بتایا ہے، تو مسلمان جو ہے وہ شیطان سے لڑتا ہے، کبھی شیطان کی زد میں آ جاتا ہے اور کبھی شیطان سے بچ نکلتا ہے. मगर मुशरिकों ने तो शैतान को माबूद बना लिया, उसकी हर बात माननी है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि फिर शैतान बहुत बड़े बड़े काम उनसे करवाता है। और उसी एक बड़े काम का तذکرہ इस आयत में कि अल्लाह ताला ने मुज़य्यन कर दिया उनकी आंखों में अपनी औलाद का कत्ल, कि इनको ये चीज पसंद आई कि जी औलाद का कत्ल करना चाहिए। और कुरैश मक्का में ये तरतीब थी कि बेटी पैदा होती तो बेटी को जिंदा दफना दिया जाता, बहुत थोड़े लोग होते जो बेटियों को जिंदा रहने देते। तो ये मक्का के कुरैश की ये एक जाहिलाना रस्म थी, शैतानी रस्म थी। शैतान ने इस चीज को उन पर मुजय्यन कर दिया। कुरान हमें बार बार याद दिलाता है कि शैतान जो है वो एक जिंदा चीज है, वो हमारे साथ लगी हुई है, मगर हम उसे भूल जाते हैं। हद तक कि बार बार कुरान ने फरमाया कि ये तुम्हारा दुश्मन है, फिर हमने शैतान को दुश्मन ना समझा तो कुरान ने एक और अंदाज से समझाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्न शैतान अदुवुन, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, फत्तखिज़ूहु अदुवा, तुम उसको अपना दुश्मन समझो। आज दुनिया में अगर कोई हमसे दुश्मनी करे, अगर वो कहे, हमें पता चल जाए कि फलां शख्स है ये हमारे खिलाफ प्लानिंग कर रहा है, ये चाहता है कि हम बेइज्जत हो जाएं, वो चाहता है कि हमारा घर उजड़ जाए, या वो चाहता है कि हमारा कारोबार तबाह हो जाए, अल्लाह अकबर, ये बस हमें पता चल जाए और हमें इसका 100% यकीन भी ना हो तो भी हम परेशान हो जाते हैं। आपस में गुफ्तगू शुरू हो जाती है, प्लानिंग शुरू हो जाती है, करना है तो क्या करना है, इस बंदे से कैसे डील करना है, किसी तरह से इसको इस पोजीशन में ले आए कि वो हमसे दुश्मनी छोड़ दे, या फिर उसको किस तरह से उससे हमने बचना है। तो दुनिया में जिस दुश्मन का अभी हमें यकीन भी नहीं है, मगर हमें पता है कि वो हमारे खिलाफ है, हम सारा वक्त जहन दिन और रात, कई मर्तबा रातों की नींद उड़ चढ़ जाती है। और ये शैतान, इसको अल्लाह का कुरान दुश्मन कह रहा है, और हम समझते नहीं जी हमारे ऊपर इसका कोई असर नहीं है। ऐसा नहीं है, शैतान का हम में से हर एक पर असर है। और ऐसा नहीं कि इसने नेकों को छोड़ देना है और सिर्फ बुरों के पीछे ये लगता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम में से हर एक के साथ शैतान लगा हुआ है, कोई ऐसा नहीं जो शैतान से बचा हुआ है। तो हर बंदे को उसके लेवल के मुताबिक शैतान जो है उसे गुमराह करता है। तो मुमकिन है कि बहुत ही नेक शख्स हो तो शैतान उसको चोरी करना और डाका डालने की तो तरगीब ना दे, मगर ये मुमकिन जरूर है कि उसको सुस्ती की तरगीब देगा, और उसको जो तहज्जुद वो पढ़ रहा है पाबंदी से उससे रोकेगा, जो जिक्र मामूलात कर रहा है उससे रोकेगा, या उसको उलझा देगा लड़ाई झगड़ों में। तो हर बंदे को उसकी सूरत हाल के मुताबिक शैतान उसको साथ डील कर रहा होता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने बार बार शैतान का तस्करा किया, सिर्फ ये नहीं कहा ये तुम्हारा दुश्मन है, ये तुम्हें अल्लाह की निगाह से गिरा देगा, ये तुम्हें बड़े बड़े गुनाह में डाल देगा। अल्लाह ने एग्जैक्टली पिन पॉइंट किया कि ये क्या करवाएगा तुमसे। चुनाचे एक आयत में अल्लाह ताला फरमाया कि वह यसुद्दुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, तुम्हें रोक देगा अल्लाह की याद से, व अनिस सलात, और तुम्हें नमाज से रोकेगा। तो ये कई मर्तबा होता है ना, इंसान जो है वो नमाज भूल जाता है। अच्छा मैं फलां काम कर रहा था, हाँ नमाज निकल गई। कई मरतबा इंसान कहता है जी आज मूड नहीं हो रहा, तो मैंने तस्बीहात तिलावत छोड़ दी। ये शैतान अपना काम कर लेता है। फिर शैतान दूसरा क्या अल्लाह ताला ने पिन पॉइंट किया, क्या करवाता है शैतान? अल्लाह ताला फरमाते हैं, अश्शैतानु याईदुकुमुल फक्र, शैतान तुम्हें फक्र व फाका से डराता है। हाय मैं गरीब ना हो जाऊं, हाय मेरा क्या बनेगा, इसलिए हर चीज छोड़ के बस वो चाहता है कि सिर्फ खाने कमाने की तरफ लग जाए और किसी चीज को ना सोचे। इतना डरा देता है इंसान, हलाल और हराम को भी नहीं सोचता कि जी मैं, इतना डर जाता है कहीं मैं गरीब ना हो जाऊं, वो कहता है कि जी मैं हराम तरीके से भी कमा लूं, दूसरे का हक भी लूट के खा लूं, मगर ये ना हो कि मैं कहीं किसी तरह से फक्र व फाका हो जाए। फिर अल्लाह ताला तीसरी चीज, वयामुरुकुम बिल फहशा, शैतान तुम्हें फहाशी का हुक्म करता है। तो कई मर्तबा इंसान नेकी में होता है मगर हैरान कर देता है शैतान उसको, बड़े बड़े फहश काम करवा के ऐसी बदनजरी करवाता है शैतान कि वो शख्स भी हैरान हो जाता है कि जी मैंने तो कभी ऐसे नहीं किया। नबी अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया कि ये जो गलत निगाह का डालना है ये शैतान के जहरीले तीरों में से एक तीर है। तो शैतान ही गलत निगाह डलवाता है। और आज अच्छे अच्छे नेक लोग ये समझते हैं कि जी बदनजरी कोई गुनाह ही नहीं है, यानी समझने से मुराद ये नहीं कि वो ये नहीं कहते कि गुनाह है या नहीं, मगर इसको इतनी आसानी से कर रहते हैं, कर लेते हैं, खास तौर पे फोन्स पे, इंटरनेट पे। इंसान कहता है मुझे कोई नहीं देख रहा, तो खूब बदनजरी नेक लोग भी कर जाते हैं, मगर एक जात है जो देख रही होती है। तो गो के हम लोगों की निगाह से तो नहीं गिरते, अल्लाह की निगाह से गिर जाते हैं। और शैतान का मकसद यही है कि इंसान अल्लाह की निगाह से गिर जाए, उसकी जिंदगी में दो रंगी हो, लोगों को दिखाने का एक चेहरा हो और अकेले जब हो तो एक और चेहरा हो। तो शैतान के देखें पिन पॉइंट, अल्लाह ताला ने हमें पिन पॉइंट करके वाजे वाजे अंदाज में ले आउट करके बताया है कि ये क्या गुनाह करवाएगा, ये जिक्र से रोकेगा, ये नमाज से रोकता है, ये इंसान को फक्र फाका से डराता है, हराम रिस्क की तरफ लेके जाता है, फहाशी की तरफ लेके जाता है, शैतान गुस्से की तरफ लेके जाता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि शैतान जो है वो तुम्हारे अंदर बुग्ज और अदावत डालना चाहता है, लड़ाई करवाना चाहता है। तो हम क्योंकि उसको दुश्मन नहीं समझते, जब गुस्सा आ रहा होता है हम कहते हैं कि नहीं जी मैं सही हूं, दूसरे ने गलती की है, मगर ये शैतान होता है जो इस गुस्से को उभार रहा होता है। और बड़े बड़े नेक लोग, जिक्र करने वाले लोग, अल्लाह अल्लाह करने वाले इस गुनाह में मुलव्वस हो जाते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गुस्से करने वाले के जिस्म में तो शैतान इस तरह दौड़ता है जैसे खून दौड़ रहा होता है। अल्लाह, तो शैतान जो है वो इंसान से क्या क्या नहीं करवाता। कुरान पाक में बल्कि हदीस पाक में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अन्निसाउ, ये जो औरतें हैं, हबाइलुश शैतान, ये शैतान की रस्सियां हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि शैतान खुद हमें गुनाह में फंसाता है, ये दूसरे इंसानों को भी इस्तेमाल करता है गुनाह में डालने के लिए। तो मुहद्दिसीन ने लिखा कि औरतें शैतान की रस्सियों से मुराद क्या, कि कई मरतबा अल्लाह इंसान को, मर्दों को औरतें ऐसे अट्रैक्टिव बना के मर्दों के जहन में डाल दिया जाता है कि वो शैतान की इस चुंगल में फंस जाते हैं। तो वो औरतों को मुजय्यन करके दिखाता है, तो औरत को वो इस्तेमाल करता है गुनाह करने के लिए। और कई मर्तबा औरत जो है जो वो अपने घर के अफराद को अपनी गफलत की वजह से गुनाहों में डालती, तो कई मर्तबा घर में औरत होती है जो इंसान को गलत काम की तरफ, झूठ बोलने की तरफ, लड़ाई झगड़े की तरफ, इन चीजों की तरफ लेके जाती है। तो शैतान कभी कभी औरत को इस्तेमाल करता है, कभी कभी शैतान मर्दों को इस्तेमाल करता है, कभी कभी औलाद को इस्तेमाल करता है, कभी कभी माल को इस्तेमाल करता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहे हैं शैतान माल को इस्तेमाल करता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम व औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों ऐसा ना हो जाए कि तुम्हें गफलत में डाल दे तुम्हारी औलाद और तुम्हारे माल अल्लाह के जिक्र से तुम्हें गफलत में डाल दें। तो कभी कभी औलाद इंसान को गफलत में, गुनाहों में डाल देती है, कभी कभी इंसान का माल उसे गुनाह की तरफ ले जाता है। तो शैतान एक जिंदा हकीकत है, वो हमारे साथ है, वो हमारा दुश्मन है। तो हम लोगों की तो खूब बुराई कर सकते हैं, जिससे भी हमारे दिल में नफरत है या उसकी पसंदीदगी नहीं है, दिल भी सोच रहा होता है, दूसरों से भी हम डिस्कस करते हैं। ये बताएं कि हम में से कितने हैं जो बैठ के दूसरों से डिस्कस करते हैं कि आज शैतान ने मेरे साथ ये किया, आज मेरे खिलाफ वो ये प्लानिंग बना रहा है। तो गो के कुरान में उसका तذکرہ है, इसलिए हम मानते हैं, मगर हमें इस्तेहजार नहीं है कि शैतान मौजूद, और बड़े बड़े गुनाह करवाने में इसी शैतान का हाल, इसी शैतान का हाथ है। और सबसे बड़ा काम जो शैतान करता है वो बदगुमानी डालता है। जहां कहीं से इंसान को दीन मिल रहा होता है, नेकी मिल रही होती है, अब नेकी मिल रही है, जिक्र मामूलात भी शैतान भी इंसान कर रहा है, अल्लाह को याद कर रहा है, कुरान पढ़ रहा है, अब किस तरह से शैतान उसको हटाए। तो जिस जगह से, जिस उस्ताद से, जिस इदारे से, जिन लोगों से, जिस करीबी रिश्तेदार से ये नेकी उसे मिल रही है, उसके बारे में बदगुमान करता है कि जी इसकी इंटेंशन सही नहीं है, इसका ये सही नहीं है, इसका वो सही नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम रात के वक्त अपने घर से बाहर तशरीफ लाए, आपकी अहलिया भी साथ थी, तो क्योंकि उस जमाने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इतना क्लियर नजर नहीं आता था, किसी सहाबी ने देखा कि आप बाहर तशरीफ लाए और आपके साथ एक औरत भी है, तो आपने बड़ी आवाज में कहा, ए हमारे फलां साथी, ये जो औरत मेरे साथ है ये मेरी बीवी है। तो उसने कहा कि अल्लाह के नबी, मैं कैसे डाउट कर सकता हूं कि आप किसी और औरत के साथ हो, अल्लाह अकबर, या आप किसी अल्लाह अकबर नाफरमानी में हो। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, शैतान बदगुमान कभी कभी इंसान को करता। तो अल्लाह के नबी को ये फिक्र के सहाबाए कराम जैसी पाकीजा हस्ती, उनको शैतान बदगुमान कर सकते हैं, तो आज तो शैतान ने खूब बदगुमानी का बाजार गरम किया हुआ है। इसलिए इससे पहले कि हम किसी से दीनी फायदा उठाएं, हम उसका कब सारा वक्त ये सोचते कि कोई उसकी नेगेटिव पहलू निकले, या किसी और शख्स से भी, हम इंसान की कई मरतबा तबीयत होती है कि बस सारा वक्त वो नेगेटिव पहलू देखता है। हदीस पाक के अल्फाज, नबी अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया कि तुम दूसरों के छुपे हुए ऐबों को ढूंढना छोड़ दो, वरना अल्लाह तुम्हारे छुपे हुए ऐबों को दिखाए ढूंढेगा और तुम्हें घर बैठे जलील करेगा। तुम दूसरों के छुपे हुए ऐबों को ढूंढना छोड़ दो, वरना अल्लाह तुम्हारे ऐबों को ढूंढना शुरू कर देगा, और जिनके ऐबों को अल्लाह ताला ढूंढेगा उसे अल्लाह जलील जरूर करेगा, अगरचे वो अपने घर में ही क्यों ना बैठा हो। तो शैतान एक काम ये करवाता है कि बस सार इसके अंदर ये बुराई तो उसके अंदर वो बुराई, ये ऐसा बुरा तो ये वैसा बुरा, और कई मरतबा आदत इतनी बन चुकी होती है दूसरों की बुराई की तस्करे की कि हम इसको गुनाह भी नहीं समझते। अब शैतान के बारे में इतना तस्करा कुरान और हदीस में आया, ये ऐसा बड़ा दुश्मन है, ऐसा लगता है इससे बचना बड़ा मुश्किल है। शेखुल हदीस हजरत मौलाना जकरिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, और वो किसी बुजुर्ग का तस्करा फरमाते हैं कि एक बुजुर्ग ने कश्फ में देखा कि ये शैतान एक बिच्छू की तरह इंसान के दिल के बराबर में है, और जैसे ही उस दिल में अल्लाह की याद नहीं होती तो शैतान डंक मारता है, वो बिच्छू डंक मारता है और उसके दिल को आलूदा करता है। तो शैतान से बचने का तरीका कि इंसान अल्लाह को याद करे। कुरान पाक में अल्लाह ने यह तरीका बताया, अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना तक़ौ, बेशक वो लोग जो मुत्तकी हैं अल्लाह से डरने वाले हैं, इज़ा मस्सहुम ताइफ़ुम मिनश्शैतान, अगर उस पर आ पड़े शैतान के गुरोह, यानी ऐसा नहीं कि थोड़ा सा किसी एक शैतान ने, बल्कि शैतान की लश्करों ने उसके ऊपर चढ़ाई कर दी, तो भी उसका हल क्या है? तज़क्करू, अल्लाह को याद करते हैं, फ़इज़ाहुम मुबसिरून, बच निकलते हैं। तो शैतान से बचने का तरीका भी अल्लाह ने बताया, इंसान अल्लाह को याद करे। इसीलिए जो लोग मशाइख के पास जाते हैं सबसे पहले जिक्र अस्कार की एक सबक दिया जाता है कि जी इस्तग़फ़ार की तस्बीह, ये दुरूद शरीफ की तस्बीह, ये कलमे की तस्बीह, ये कुरान पाक की तरतीबी होनी चाहिए, जिक्र मुराकबा की तरतीबी हो। जिस बंदे की जिंदगी में जिक्र होता है अल्लाह ताला उसको शैतान से महफूज फरमाते हैं। एक हदीस में आता है कि दो अजकार ऐसे हैं कि शैतान वहां से भाग जाता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक मरतबा शैतान ने कहा अहलकतुन्नासा बिज़्ज़ुनून, कि लोगों ने मुझे हलाक कर दिया अपने गुनाहों से। नहीं, अहलकतुन्नासा बिज़्ज़ुनून, मैंने लोगों को हलाक कर दिया गुनाहों के जरिए से। वह अहलिकूनी बिला इलाह इल्लल्लाह वल इस्तग़फार, लोगों ने मुझे हलाक कर दिया ला इलाह इल्लल्लाह पढ़ने से और इस्तग़फार करने से। इसलिए जो शख्स ला इलाह इल्लल्लाह की तस्बीह सुबह शाम पढ़ता है, इस्तग़फार की तस्बीह सुबह शाम पढ़ता है, अल्लाह ताला उसको शैतान से महफूज कर देते हैं। ये ऐसा जालिम है शैतान, ये किसी को नहीं छोड़ता। किताब में वाक्य लिखा है इमामुल औलिया शेखुल मशाइख हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, इस उम्मत के बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, इनका वाक्य किताबों में लिखा है कि एक मर्तबा बैठे हुए अपने दिल में अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, तो अल्लाह का जिक्र करते करते एक आवाज आई कि ए अब्दुल कादिर, हमने तुझ पर से कलम उठा ली है। क्या मतलब? कि अब तू जो भी गुनाह करे, हमने फैसला कर लिया है कि हमने तुझे जन्नत में डालना है। ऐसी आवाज आई। अब आवाज भी जो है वो किसी आदमी की किसी की नहीं थी, गैबी सी आवाज थी। और किस वक्त आ रही है? जब जिक्र अजकार अल्लाह को याद कर रहे हैं, जब ये आवाज आई अल्लाह को याद करते करते, तो जहन में आया कि ये आवाज आई है, मगर क्योंकि अल्लाह वाले थे, अल्लाह को याद कर रहे थे, अल्लाह ने दिल में ये जरूर डाला कि ये मुमकिन है कि शायद ये मेरे लिए, ये कैसे मुमकिन है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि आखिरी वक्त तक इबादत करनी है, वअबुद रब्बक हत्ता यातियक अल यकीन। अल्लाह ने अपने महबूब से फरमाया कि महबूब आप हमारी इबादत करते रहे हत्ता कि आपका वक्त आ जाए। तो नबी अलैहिस्सलाम को तो हुक्म है कि आखिरी वक्त तक करनी, मुझ पर से कैसे कलम उठ सकती है? ये जरूर शैतान की आवाज है। तो आपने जोर से पढ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और हदीस पाक में आता है कि जब ये पढ़ा जाता है तो भी शैतान दूर हो जाता है। तो जैसे आपने ये पढ़ा तो शैतान भागते हुए निकल गया, मगर जाते जाते एक वार कर गया। फिर आवाज आई, ए अब्दुल कादिर तू बच गया अपने इल्म की वजह से। अब कोई कच्चा होता तो वो यही समझता कि हाँ जी मैंने शैतान से भी मार का जीत लिया, मगर उन्होंने अभी भी शैतान के वार को समझ लिया। उन्होंने कहा कि ए बदबख्त, मैं अपने इल्म की वजह से नहीं बचा, मैं अल्लाह की रहमत की वजह से बचा हूं। तो ये शैतान है ऐसा, ये बड़े बड़े अल्लाह वालों को भी नहीं छोड़ता, इसने अटेम्प्ट करनी है। और हम समझते हैं कि नहीं जी हमारा कुछ नहीं कर सकता, ये दूसरे गुने गुनाह में पड़े हुए लोगों के लिए है। ये जो कई मर्तबा कुछ जिक्र मामूलात करने वाले नेक लोग होते हैं, मगर इनसे बड़ा गुनाह इसलिए हो जाता है कि शैतान वेट कर रहा होता है, इंतजार में होता है कि ये गाफिल हो, अल्लाह से दूर हो, अल्लाह की याद से दूर हो। और कई मर्तबा नेक लोगों से वो ज्यादा बड़ा गुनाह करवा लेता है कि ठीक है अब इसने थोड़ी देर के लिए गफलत में आया, ये अब उस वक्त में इसके ऊपर अटैक करें। तो कई मर्तबा नेक लोग जिनसे एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि वो यूं गुस्सा करेंगे, वो यूं कोई फहश काम करेंगे, वो यूं किसी का दिल तोड़ेंगे, वो यूं किसी पे जुल्म करेंगे, इंसान एक्सपेक्ट भी नहीं करता, मगर शैतान को विंडो मिलती है और शैतान अपना काम कर देता है। इसलिए उलमा ने ये लिखा है कि अल्लाह वालों की बड़ी निशानी ये होगी कि उन पर गालिब जिक्र होगा, कि ये नहीं कि दिन का बस एक वक्त अल्लाह की याद में बाकी पूरा दिन गफलत में, वो अक्सर औकात में अल्लाह को याद करने वाले होंगे। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि अल्लाह वालों की जिंदगी में बड़े बड़े चंक्स ऑफ टाइम जो है वो जिक्र मामूलात के बगैर गुजर रहे हो। इसलिए हमारे मशाइख ने मामूलात में से एक मामूल बताया, वकूफ कल्बी, कि हर वक्त अपने दिल का ध्यान अल्लाह की तरफ करना है, हाथ काम काज में मसरूफ, दिल अल्लाह की याद में मसरूफ। इसलिए कई मर्तबा मशायख अपने हाथ में तस्बीह रखते हैं, इसलिए नहीं कि उनको तस्बीह को काउंट करने की सिर्फ जरूरत है, बल्कि इसलिए कि वो तस्बीह याद दिलाती है कि मैंने हर वक्त अल्लाह को याद करते रहना है। और जब ये शैतान जो है इसको हम दुश्मन समझना छोड़ देते हैं और हम समझते हैं कि जी हम शैतान प्रूफ हैं, फिर शैतान खूब गेम्स खेलता है। और यहां इस मुबारक आयत में अल्लाह ताला ने इन मुशरिकीन का यही तस्करा किया कि इन्होंने जब बुतों को बना लिया माबूद, तो यूं ही समझ लें शैतान को माबूद बना लिया। अब शैतान हर उल्टी सीधी चीज को मुजय्यन करके इनको दिखाता, इसलिए जानवरों की पूजा करना, तो इंसानी आजा की पूजा करना, सूरज की पूजा करना, किसी भी पत्थर की पूजा करना, औरतों की पूजा करनी, अजीब वगैरह किस्म की जो है वो उनके अंदर चीजों को मुजय्यन करके डाल दिया। हत्ता के इतना गैर फितरी तरीन काम औलाद को कत्ल करना, ये अल्लाह ताला ने, ये शैतान ने उनको मुजय्यन कर दिया। जब शैतान ज्यादा गालिब आ जाता है, इंसान बड़े बड़े गुनाह करता है। चुनाचे नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक आदमी आया, उसके साथ एक छोटी सी बच्ची थी। नबी अलैहिस्सलाम के पास जब वो आए और आकर बैठे, तो अल्लाह के नबी ने ये देखा कि ये इस बच्ची को बहुत प्यार कर रहे हैं, इसके सर पे हाथ रख रहे हैं, इसको बोसा दे रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया कि ये तुम्हारी बेटी है? उसने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, ये बेटी नहीं, मेरी भतीजी है, और आज मैं आपके पास आया हूं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूं। अल्लाह के नबी ने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, अल्लाह के नबी, हम तो काफिर थे, मुशरिक थे, और हम सब के लिए बेटी जो थी वो एक कलंक का धब्बा थी। जिसके घर में बेटी पैदा हो जाती वो यही समझता कि मेरे घर में बदशगुनी आ गई है, बेबरकती आ गई है। तो मेरी जब वाइफ, मेरी जब बीवी हामिला हुई, प्रेग्नेंट हुई, तो मेरी बीवी को मेरा नुक्ता नजर बहुत क्लियर था कि अगर बेटी हुई तो मैंने उसको जिंदा दफनाना है। और आज भी वो कब्रिस्तान जहां बच्चियों को जिंदा दफनाया जाता था मक्का मुकरमा में, अभी भी मौजूद है, और वो हरम से थोड़ा ही दूर। अल्लाह अकबर। तो कहने लगा वो शख्स कि अल्लाह के नबी, मेरी बीवी को मेरा ये पता था कि अगर बेटी हुई तो मैंने उसको जिंदा दफना देना है। अल्लाह की शान, बच्ची की विलादत के वक्त सफर था, तो मैं एक सफर से कहीं गया हुआ था और मेरे यहां बेटी पैदा हो गई। मेरी बीवी ने इस खौफ से कि मैं सफर से वापस आऊंगा तो इस बच्ची को जिंदा दफना दूंगा, मेरी इस बच्ची को अपनी बहन के यहां भेज दिया और बहन से कहा कि ये तेरी भांजी है, तू उसकी परवरिश कर, यहां रखूंगी तो मेरा शौहर इसे कत्ल कर देगा। और हदीस पाक में आता है कि जो खालाएं होती हैं ये माँ ही का रुतबा है। तो बहन ने बेटी को ले लिया और शौहर जब आया तो बीवी ने कहा कि जी मैंने उसको ठिकाने लगा दिया, मुझे पता था कि बेटी होगी तो तुझे पसंद नहीं, तो मैंने उसको दफना दिया। शौहर भी मुतमईन हो गया कि जी बच्ची अब नहीं है कोई हमारे पास। कहते कहती है कि मैं अपनी ये जो बहन के पास अपनी बच्ची को छोड़ के गई थी, तो बहन को कहती कि कभी कभी बच्ची को मेरे घर पे भेज ताकि मैं इसको अपने इसके वालिद से मानूस करवाऊं। तो कभी कभी ये आती तो मेरा शौहर उसके साथ बहुत खेलता और मैं इनकी आपस में बहुत मोहब्बत करवा दी, हत्ता कि मेरा शौहर इसको, मुझे महसूस होने लगा कि बिल्कुल अपनी बेटी ही समझता और उसी तरह उससे प्यार करता, उसी तरह उसके साथ खेलता, उसी तरह उसके साथ बातचीत। जब मुझे यकीन हो गया कि अब इसकी और इस बच्ची की बहुत ताल्लुक हो गया, बहुत मोहब्बत हो गई, तो मैंने उस पे इस बात को आया कर दिया कि ये हमारी अपनी ही बेटी है और मैं अब उसको हमारे अपने घर में ला रही हूं। वो कहने लगा कि ये बात सुन के मैं वैसे तो खामोश हो गया, मगर मेरे अंदर ये जाहिलियत फिर जाग उठी, फिर शैतान ने जोर लगाया और कुछ दिन तक तो मैंने बर्दाश्त किया, मगर आखिर को शैतान गालिब आया। मैंने बीवी से कहा कि मैं इस बच्ची को लेके कहीं जा रहा हूं, कहीं इसको खिलाने के लिए या कोई ऐसी चीज। कहने लगा कि मैं ले गया। अब वो बच्ची मेरे साथ बड़ी खुशी खुशी चली गई कि मैं अब्बू के साथ कहीं घूमने जा रही हूं, और मैंने कुदाल ले लिया और मैंने उसको जिंदा दफनाने का पूरा प्रोग्राम बना दिया। तो मैं कुदाल से जब खोद रहा था तो ये बच्ची जो है ये मेरी मदद करती और कभी मेरा पसीना पहुंचती और मेरे साथ मोहब्बत का इजहार करती, और मैं ऐसा वहशी बना हुआ था कि इसी बच्ची की कब्र खोद रहा था। हत्ता कि जब मैंने बच्ची को अंदर डाला तो बच्ची मेरे साथ इस मट्टी से खेलने लगी कि मेरे अब्बू मेरे ऊपर मट्टी डाल रहे, मैं अब्बू के ऊपर मट्टी डाल। हत्ता कि उस बच्ची का सांस तंग होने लगा तो वो कहने लगी अपने मासूम अल्फाजों में कि मुझे तकलीफ हो रही है और मेरे ऊपर इतनी हैवानियत आई हुई थी कि मैंने इस छोटी बच्ची की इस मासूम चीखों का भी ख्याल ना किया और मैं मट्टी डालता रहा और वो चीखती रही अब्बू अब्बू कहती रही अल्लाह अकबर, और मैं ऐसा हैवान था कि मैंने इस बच्ची को जिंदा दफना दिया। ये वाकया सुनकर वो शख्स भी रोने लगा, अल्लाह के नबी की मुबारक आंखों में भी आंसू आ गए। हत्ता कि उसने कहा अल्लाह के नबी आपका शुक्रिया अदा करने आया हूं कि आप इस्लाम लेके आए, आपने हमें इंसान बनना सिखाया, आपने हमें बताया कि जिसके घर में बेटी होगी और वो उसकी अच्छी परवरिश करेगा वो जन्नत में मेरे साथ होगा। तो अल्लाह के नबी अब ये बच्ची जो है ये मेरी अपनी तो नहीं, मेरे भाई की बेटी है, मेरी भतीजी है, मगर मैं इससे इसी तरह से प्यार करता हूं जैसे मेरी अपनी बेटी है और हर वक्त अपने उस गुनाह पे अल्लाह से माफी मांगता हूं। जब शैतान हावी हो जाता है तो इतने बड़े बड़े गुनाह करवा देता है। كذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم, और इसी तरह मुजयन कर दिया बहुत से मुशरिकों की निगाह में उनकी औलाद के कत्ल करने को, शुरकाउहुम उनके शयातीन ने, लियुर्दूहुम ताकि उनको हलाक कर दे। तो अल्लाह के नबी की मुबारक आमद का की एक बरकत थी कि हमें शैतान के सामने खड़ा रहना आ गया। तो जो शख्स इबादत में वक्त लगाता है, जिक्र मामूलात में वक्त लगाता है, शैतान के हथकंडों से बच जाता है। अल्लाह ताला हमें शैतान के हथकंडों से महफूज फरमाए। बड़े बड़े अंबिया ने दुआ मांगी कि अल्लाह हमारी भी शैतान से हिफाजत फरमा, हमारे औलाद की भी शैतान से हिफाजत फरमा। अल्लाह ताला शैतान से हमारी हिफाजत फरमाए और हमें अपने बख्शे हुए गुनाहगारों की कतार में शामिल फरमाए। यहाँ आके आज की क्लास मुकम्मल होती है। ये आजिज एक मरतबा फिर इस सबक का तर्जुमा करता है। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ, اور اسی طرح مزین کر دیا ہم نے بہت سارے مشرکوں کی نگاہ میں, قتل اولادہم ان کی اولاد کے قتل کرنے کو, شرکاؤہم ان کے شریکوں نے, ان کے شیطانوں نے, لِيُرْدُوهُمْ تاکہ ان کو ہلاک کر دیں, وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ताकि रला मिला दें उन पर उनका दीन, वलौ शा अल्लाहु मा फअलूहु, अगर अल्लाह चाहते तो वो ऐसा ना करते, फजरहुम, तो ऐ महबूब आप इनको भी छोड़ दें, वमा यफ्तरून और उनके झूठ को भी जाने दें। यहाँ आके आज की क्लास मुकम्मल होती है। तालिबात थोड़ी देर के लिए मुराकबा कर लें, आंखों को बंद कर लें, सर को झुका लें, दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे हट कट के अल्लाह की याद, थोड़ी देर के लिए अपने दिलों में अल्लाह को याद कर लें, आंखों को बंद कर लें, सर को झुका लें। सारे नबियों के रुतबे बड़े हैं, सारे नबियों के रुतबे बड़े हैं, मेरे आका का मन सब जुदा है, सारे नबियों के रुतबे बड़े हैं, मेरे आका का मन सब जुदा है, वो इमामे सफ़े अंबिया है, वो इमामे सफ़े अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है, वो इमामे सफ़े अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है, कोई लफ्ज़ों में कैसे बताए उनके रुतबे की हद है तो क्या है, कोई लफ्ज़ों में कैसे बताए उनके रुतबे है तो क्या है, हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है, सारे नबियों के रुतबे बड़े हैं, मेरे आका मन सब जुदा है, वो जो एक शहर नूरुल हुदा है, जलवा गाहों का एक सिलसिला, वो जो एक शहर नूरुल हुदा है, जलवा गाहों का एक सिलसिला है, जिसकी हर सुबह हो शम्सो दुहा है, जिसके हर सुबह हो शम्सो दुहा है, जिसके हर शाम बद्रु दुजा है, जिसके हर सुबह हो शम्सो दुहा है, जिसकी हर शाम बद्रु दुजा है, नाम जन्नत का तुमने सुना है, मैंने उसका नजारा किया है, नाम जन्नत का तुमने सुना है, मैंने उसका नजारा किया है, मैं यहाँ से तुम्हें क्या बताऊँ, मैं यहाँ से तुम्हें क्या बताऊं, मैं यहाँ से तुम्हें क्या बताऊं, मेरे आका की मस्जिद में क्या है, सारे नबियों के रुतबे बड़े हैं, मेरे आका का मन सब जुदा है,
वो इमामे सफे अम्बिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुआ कर लीजिए। सुभान रब्बी अल अल वहाब, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आल सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफिआ व अमलन मुत्तकबला व लिसानन ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. एक बस छोटा सा ऐलान है, इंशाल्लाह आज शबे बारात की रात है, तो आज रात 9 बजे इंशाल्लाह शब बारात से मुतालिक बयान होगा, इसी यूट्यूब पे लाइव होगा। जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।